ओम शांति। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। सतीश भाई जी, पिछले 40 वर्षों से आप ज्ञान मार्ग में और अपनी समर्पित जीवन 35 वर्षों से पांडव भवन में स्थित हो, आप विभिन्न सेवाएं देते रहते हैं, जैसे डबल विदेशियों को हिंदी सिखाने की भी एक बहुत अच्छी सेवा आप देते हैं, जिससे डबल विदेशी शायद बिना ट्रांसलेशन के ही वो भगवान की आवाज में ही वह सुंदर अनुभव कर सके। स्वयं तो भगवान से प्रीत लगाते ही है आप, पर आपकी प्रीत के साथ उस गीतों के माध्यम से हम सभी के भी योग को सहज बनाते हैं। आपने 5000 से भी अधिक गीतों की रचना की है, जिसमें से 500 गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है। बोरीवली में आपका आना जाना रिकॉर्डिंग के कार्यक्रम के लिए होता रहता है। विशेष और एक सुंदर सेवा आपकी रही है पिछले 25 वर्षों से, दादियों का भोजन बनाना, दादियों के लिए भोजन की सेवाएं देना, ये बहुत सुंदर सेवा। आर्ट एंड कल्चरल विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा हम कई बार गीतों का या कई फंक्शन को हम उस जो भी फंक्शन होते हैं उसका आनंद दुगना हो जाता है, तो मधुरवाणी ग्रुप का हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं। तो वह मधुरवाणी ग्रुप के आप इंचार्ज हैं, जिस मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा हमने कई बार डायरेक्ट हर समय पर आपके गीतों को सुना भी है, प्रस्तुति सुनी है। जो भी बाबा की छोटी मोटी फिल्में बनती है उनमें आपने आपकी आवाज के द्वारा भी सेवाएं की है। आज हम सभी अनुभवों के माध्यम से आपके ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करेंगे। आपका विषय है सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति, और ये तब संभव हो पाता है। शायद भाई जी को इतनी सारी प्रेरणाएं, ये सुंदर कलाएं उनमें तब है शायद कि पिछले 40 वर्षों से ना तो उन्होंने कभी अपने अमृत वेले को मिस किया है और ना ही चाट। ये दो बातों के कारण शायद ये वरदानों से सदैव आप भरपूर रहते हैं। हम सभी एक बार पुनः एक हाथ की ताली के द्वारा स्वागत करेंगे आदरणीय सतीश भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। भट्टी की संपन्नता और हमारी संपन्न स्थिति का टॉपिक भी है आज। मैं सबसे पहले आप सबको मधुबन में आने की, बहुत अच्छे समय पर आने का और एक सफल सुनियोजित और संपन्न भट्टी करने की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। संपन्न स्थिति, इस ब्राह्मण जीवन की प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। प्रारब्ध इस मायने में कि जिस दिन हम बाबा के पास जन्म लेते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, राजयोगी बनते हैं, जन्मते ही बाप दादा द्वारा हमें संपन्नता सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति का हमें वरदान मिल जाता है। बच्चा जन्म लिया और बाप के वर्षे का अधिकारी बन गया, हकदार बन गया। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन ही भगवान ने हमें योगी भाव और पवित्र भाव का वरदान दे दिया। उसी दिन बाबा ने ये कह दिया कि तुम तो मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं रखूंगा भी तो किसके लिए, मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। तो जन्मते ही हमें संपन्न स्थिति, सर्व प्राप्तियां हमें मिल जाती है उसे दिन। अगर हम उस चीज को स्मृति में रखते हैं तो समझिए कि हम स्वयं संपन्न हैं, और यदि हम उसको भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो क्या होता है, अभी अभी हम अधिकारी बनते हैं और अभी अभी भिखारी बन जाते हैं, है ना। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को जमा करने का, श्रेष्ठ स्मृति से समर्थी स्थिति, स्मृति से समर्थी पाने का। स्मृति आई, स्विच ऑन किया और सब कुछ दिखाई पड़ता है। स्मृति आई, मुझे कौन मिला है। स्मृति आई, मैं कौन हूं। स्मृति आई, मैं तो सब कुछ इस सृष्टि रूपी वृक्ष का पूर्वज हूं, पूज्य हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं, दाता हूं, विधाता हूं, वरदाता और भाग्य विधाता हूं। स्मृति आई कि हम ब्राह्मण हैं, इस कल्प वृक्ष के जड़े हैं, तने हैं। ये स्मृति आई कि भगवान के साथ हम भगवान के मददगार हैं, हम उसके समान, उसके साथी, उसके सहचर, उसके सहयोगी, सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को प्राण दान देने वाले। स्मृति आई कि हम कल्प कल्प के भगवान के साथ इस ईश्वरीय कार्य में सफल अपना कार्यक्रम देते हैं, हम सब भगवान के साथी हैं, भगवान भी हमसे मांगता है, उसने सहयोग का हाथ मांगा है, आओ बच्चे तुम्हें ये करना है। तो एक संपन्न स्थिति मिलती है हमको जन्मते ही, संपन्नता। ब्रह्मा बाबा को जब बाबा मिले तो बाबा के मुख से निकलने लगा, पहले तो था अल्लिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लिफ का हुआ रेल कराही। दूसरी बार आया, खजाना मिल रहा है, पा रहा हूं, चाबी मिल रही है, खजाना मिल रहा है, पा रहा हूं, पा रहा हूं, पा रहा हूं। तीसरी बार बाबा ने खत लिखा, पत्र लिखा, क्या लिखा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, सब कुछ मिल गया। उसने देखा बहुत, तो माला माल हो गए। जैसे बाबा से निकलने लगा कि पाना था सो पा लिया, बाबा ने देखा यहां दुनिया की, कलयुगी दुनिया के सारे जितने भी धन संपत्ति वैभव कुछ भी है, वो सब ठिकरी है, वो कौड़ियां हैं, पत्थर हैं, हीरे भी पत्थर दिखाई पड़ने लगे। और बाबा ने सब अपना बाइंड अप कर दिया, अपना सब व्यापार, कुछ भी नहीं, ऐसे छोड़ा जैसे था ही नहीं, ऐसे छोड़ा। हीरे जवाहरात कितने व्यापार के, कितना था, जो राजाओं से कनेक्शन हो सोच लो, कितना बड़ा व्यापार होते हुए जो इतने सम्मानीय थे, दुनिया के लोक लाज की कोई परवाह नहीं की। भगवान से मिला, भगवान मिला, सब कुछ मिल गया, बाकी फिर क्या रहा, छोड़ने की मेहनत नहीं की, ऐसा लगा कि वो तो छूट ही गया अपने आप, सरलता से, सहजता से। जब किसी कोई ज्यादा अच्छा मिल जाए तो दूसरा तो अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता है। केवल हमारे अंदर ये ना हो कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी हाथ में तो है ही, एक मुट्ठी में आ ही रहा है, दूसरा मुट्ठी खाली क्यों छोड़ू, है? होता है ना। तो संपूर्णता, संपन्न स्थिति एक प्रलब्ध के रूप में जैसे बाबा को मिला, वैसे हम बच्चों को भी मिल गया। हम अपने आप को चेक करें, क्या भगवान को पाने के बाद, भगवान का संपूर्ण ज्ञान पाने के बाद, ज्ञान के खजानों को पाने के बाद, पवित्रता की अनमोल संपत्ति मिलने के बाद, इतना बेहद का ईश्वरीय परिवार पाने के बाद, और ड्रामा का इतना खूबसूरत ज्ञान मिलने के बाद, और इतना अतींद्रिय सुख मिलने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या कमी रहेगी? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? सोचे चारों तरफ, भगवान को पाने के बाद इतना सब कुछ मिल गया, अब मन क्यों कहां जाता है, क्या चाहता है? पूरे 84 जन्मों में हमने एक एक जन्म में क्या क्या नहीं किए, कुछ भी नहीं मिला, सब गवाए, जो भी किया गवाए, लेकिन संगम युग में तो सब कुछ पाए। भगवान के पास आते ही सब पा गए, सब तरफ से पूरा दौड़ धूप के सब कुछ करके अब देख लिया हमने जग सारा, अपना घर ही सबसे प्यारा। लौट के अपने घर में आए, बाबा के बने, सब कुछ लगा के हम तो सब कुछ पा गए। अब इतना पाने के बाद यदि हमारा मन हीरे जवाहरात या इतने ज्ञान के अनमोल रत्न मिलने के बाद भी यदि पत्थर में, ठिकरियों में, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में, अपने पुराने संस्कारों में कुछ अगर है, बुद्धि जाती है, तो अपने मन से पूछना चाहिए, मन, मेरे मन, तूने तो बहुत भटकाया, पूरे कल्प कल्प खाली कर दिया, बहुत ही नाच नचायो, है कितना नाचे, कहां नहीं गए, क्या नहीं किया? अरे अब तो थोड़ा समय मिला है, भगवान के पास आ गए हैं, अब कहां मुझे खींच के लेकर जाता है? अगर अब लेकर गया तो मुझे कहां पहुंचा देगा? जरा सोच तो सही, है? अब उसको बहुत प्यार से डिमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि बहुत हो गया, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, बहुत कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन अब नष्ट नहीं करूंगा, है? बहुत है नाच नचायो, छछिया भर छाछ प्याए, बहुत है नाच नचायो। इसलिए उसको मन को बड़े अच्छी तसल्ली से कह दो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी तृष्णाओं के पीछे कहीं अपने बहुत ही अल्पकाल के सुखों के पीछे कहीं जा करके हम अपने पूरे कल्प कल्प के पार्ट को कहीं बदल तो नहीं रहे हैं? कहीं हम छोटे छोटे आकर्षणों में फंसकर भगवान की संपूर्ण संपत्ति, उसके बेहद के दिल तख्त को, उसके द्वारा मिले हुए ताज को, उसके द्वारा मिले हुए राज तिलक को कहीं हम गंवा तो नहीं देते? जो जितना गहराई से इस बात को चिंतन करता है उतना ही वो संगम युग में सशक्त हो जाता है। हम सबको यदि ईश्वरीय ज्ञान का आनंद लेना है, हर परिस्थिति में एकरस होना है, तो हमें अपने श्रेष्ठ चिंतन को बढ़ाना चाहिए। जिसके पास शुभ संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, वो ब्राह्मण जीवन का आधार भी है और भविष्य की श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है। आज स्लोगन था ना, स्लोगन था ये, शुभ चिंतन बहुत बड़ा खजाना है। जिनके पास सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं। जिनके पास सुंदर विचार, वो होते नहीं अकेले हैं। वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले हैं। वो रहते हैं प्रभु के पास, खुशियों के लगते मेले। अपने ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाएगा। अपने ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाएगा। ख्यालों को खुशनुमा तुम, ख्वाबों को खुशनुमा तुम सदा पाओगे, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाएगा, वो जन्नत आसमां से उतर आएगा। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों,
रोजाना अपने लिए शुभ चिंतन का एक स्पेशल प्रोग्राम ही बना लें। अब हमारे मन में शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन निरंतर चलता रहे। ये शुभ चिंतन ही हमें बाबा के करीब लाएगा। आने वाले समय में परीक्षाओं की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, माया के तमाम रूप हैं, दुनिया समस्याओं का घर है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, बहुत बड़े संकटपूर्ण संसार से हमें निकलना है, समय और संसार से। और इसमें वही सफल होगा संपूर्णता जो अच्छा चिंतन करना आता हो। किसी ने एक बार बाबा से कहा, पूछा कि बाबा यदि योग ही सब कुछ है, याद याद सब कुछ है, तो इतना पढ़ाई पढ़ने का, पॉइंट्स लेने का, ये करने का, सेवा करने का, भागने का, यहां वहां जाने का क्या मतलब है बाबा, क्यों जाए, हम योग करते रहे। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा समय आएगा, ऐसी बातें होंगी कि योग टूट जाएगा, और योग को दृढ़ता देने के लिए, मजबूती देने के लिए जो शक्तिशाली पिलर चाहिए वो है ज्ञान, वो है सेवा, वो है धारणा। इनसे आपके जीवन को बल मिलेगा, आपके विचारों को बल मिलेगा, आपके योग को बल मिलेगा। इसलिए केवल योग नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना है, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना है। तो आज भी बाबा ने यही कहा, मेहनत, याद की यात्रा में मेहनत बहुत है, लेकिन ये नहीं कहा बस याद ही करते रहो, करना सब है। ऊंची मंजिल बताई, अपने आप को आत्मा समझकर, बिंदु समझकर, बिंदु बाप को यथार्थ रूप से वो जो है जैसा है वैसा याद करना, ये है मुख्य मेहनत। बाकी तो सब सरलता से चलता जाता, सब कुछ हो जाता है सहज ढंग से। तो आइए हम देख ले कि सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति में प्राप्तियां कितनी कितनी है, बहुत बड़ा है। आज भट्टी आपकी समाप्त हो रही है, संपन्न हो रही है, समाप्त नहीं, क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। आप पिछले कुछ दिनों से यहां पर लगातार मधुबन का आनंद ले रहे हैं। मुंबई वालों के लिए ऐसे ऐसे मौके, एक बड़ा अद्भुत मौका है, ये भाग्य का खुला हुआ खजाना मिला है आपको, बहुत बड़ी, जो आ गए इतने, कितने लोग, कितने हैं भाई बहने, बंबई में तो बहुत है और बोरीवली तो प्रास्परस है, पहले ही से ही बहुत है भाई बहने, उनमें से आप चुनिंदा यहां आए हैं। आपको अपने श्रेष्ठ भाग्य की, अपने हाथ ऐसे करके अपने पीठ को थोड़ा सा ऐसे, वाह वाह मेरा भाग्य है, ऐसे बधाई दीजिए। बहुत अच्छा, हम आपको बधाई देते हैं, बंबई में रह के समय निकाले ये आपकी बड़ी बहादुरी भी है, क्योंकि बंबई वालों को 99 के फेर से कहां मुक्ति है, है? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए आप आए, आनंद लिए, ये बाबा की करीब आपके श्रेष्ठ भाग्य का ये प्रतीक है। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति ये है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। ये साधारण बात नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न होने के बाद मन से निकलता है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो पाना था पा लिया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं समाप्त नहीं होती, आदमी समाप्त हो जाता है, संसार भी समाप्त हो जाता है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोग हमको ही भोग लेते हैं। वयम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम स्वयं भोगते नहीं है, बल्कि हम स्वयं ही भोग लिए जाते हैं भोगों में। इसलिए इच्छाएं जो है वो कभी भी शांत, आदमी तो इच्छाओं से जन्म लेता है, इच्छाएं उनसे आगे निकलता है और इच्छाएं रखता ही रहता है। इच्छाएं नहीं देखे तो कहते हैं स्वप्न नहीं देखेंगे तो हम पाएंगे कैसे, सपने बुनो, खूब कहते सपने बुनो, सपने बुनते रहते हम, ये करें तो सपने सपने रह जाते है ना। तो वो सपने ही सपने होते हैं, लेकिन साकार कब होते हैं, हम बाबा के पास आए सपने सारे साकार हो गए। लौकिक दुनिया में लोग इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते, इच्छा से मुक्त हो जाए ये कामना भी समझते भी नहीं। वो तो कहते हैं भगवान को भी इच्छा हुई कि नहीं दुनिया एक बनाऊ, मैं दुनिया बना दू। भगवान को भी इच्छा हो गई, भगवान ने सोचा ये बना दू वो बना दू, वो बन गया तो भगवान आश्चर्य हो गया क्या बना दिया मैंने। लोग ऐसे बोलते हैं कि इंसान बना के भगवान भी परेशान हो गया है, दुनिया के लोग बोलते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं किसने बनाया कैसे बना। तो इच्छाओं के वश में है व्यक्ति, इच्छाएं बहुत परेशान करती हैं। इसलिए इच्छा मात्र अविद्या अगर पाना है तो अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहना है। मुझे सब कुछ मिल गया है, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। यदि कहीं कुछ इच्छाएं आ रही हैं तो समझ लें कि इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छाओं के दास बनने वाला हमेशा ही उदास रहता है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है इच्छाएं उनके पीछे पीछे रहती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं है, वो सामने नहीं मिल पाती है, इच्छाएं कभी मिलती नहीं है। इसलिए साथियों हम अपने आप से पूछें, अपने घर को सामने से देखें, बंगले को सामने से देखें, क्या ये मेरा है? जिसको मैं कह रहा हूं मेरा, मेरा मैं कह रहा हूं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरा जो भी हम कह रहे हैं, ये क्या है? ये मेरा है? कहते हैं सुकरात, यूनान का बड़ा दार्शनिक था, वो रोज जाता था शहर में घर से और मॉल के सामने खड़ा होके बड़े ध्यान से पूरा मॉल को ऊपर से नीचे तक बार बार सब सामान जो होता था वो भी सब पूरा देखता था। देखते हैं पूरा देखने के बाद, सामने खड़ा होके पूरा देखने के बाद चला जाता था, रोज आता था रोज चला जाता था। दुकानदार देखता था ये रोज आ रहा है, आज जा रहा है जा रहा है, आखिर इसकी नियत क्या है? उसको मालूम नहीं था ये कौन है, लेकिन देखता था इंसान ये रोज आता है, कहीं कुछ और तो इरादा नहीं है, क्या बात है? आखिर एक दिन उसने पूछ लिया कि तुम रोज आते हो, तुम्हारा विचार क्या है, तुम चाहते क्या हो? उसने कहा कुछ नहीं, रोज सवेरे होता है तो मन कहता है ये ले लूं वो ले लूं, ये पा जाऊं वो पा जाऊं, तो चलता हूं चलो शहर में चलता हूं, यहां आके मैं जब देखता हूं सबको देखता हूं तो पूछता हूं क्या इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, क्या तुम इसको लेकर आए थे, क्या तुम इसको लेकर के जाओगे? और जब मन से आता है, जब तक ये नहीं आता है तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तब तक यहां खड़ा रहता हूं, और जब मन कहता है कि नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो चला जाता हूं, रोज चला जाता हूं। ऐसे हम रोज अपने आप से बात करें, रोज सवेरे हो कि मेरे अंदर कहीं नया नया कोई सगुफा तो नहीं पल रहा है, नई फिलॉसफी तो नहीं तैयार हो रही, इच्छाओं का नया बाउंडर तो नहीं तैयार हो रहा है, तूफान तो नहीं खड़ा हो रहा है कि थोड़ा ये हो जाए, थोड़ी सी दुनिया का जरा देख लूं, हवा क्या है, रंग क्या है, थोड़ा तो देख लूं, दुनिया में आया हूं तो कहीं है तो नहीं, क्यों हो रहा है? अक्सर करके व्यक्ति को नहीं भी होता है, लेकिन पड़ोसी को देखता है कि इसके पास ये चीज है ना, मेरे पास ये नहीं है, तो उसको बड़ा दुख होता है, उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं आज इंसान अपने दुख में इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसियों को सुखी देखकर दुखी है। इसलिए दुख का कारण हमारी इच्छाएं दुख पैदा करती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं आदमी परेशान हो जाता है, तनाव क्रोध सारे झंझट। देखे तो एक इच्छा है, एक समझो तिलस्म है, उसको खोल दो इच्छा का दरवाजा तो आगे देखो तो नर्क ही नर्क है, नर्क सारे नर्क का कारण इच्छाएं बन गई। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में संतुष्ट स्थिति। दूसरा है संतुष्टता, जो संपन्न स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है वह है संतुष्टता। संतुष्टता कैसे आती है? संतुष्टता बेहद के वैराग्य से आती है। जिसके पास बेहद का वैराग्य है वही त्याग करता है। जो त्याग करता है वही संतुष्ट होता है, जो संतुष्ट होता है वही एक रस होता है, जो एक रस होता है वही स्थित प्रज्ञ होता है। जो बेहद का वैरागी है वही त्यागी है, जो त्यागी है वही संतुष्ट है, वही संतुष्ट। त्याग के बिना संतुष्टता नहीं आ सकती है। आप कोई चीज को लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कितना लोगे, कभी भी पेट नहीं भरेगा, बस हो गया, बस नहीं चाहिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बाबा जिस दिन आए, बाबा को मिला, बाबा ने देखा अमेरिका सहित धन संपन्न जो भी है, सारी संसार लगता था ताश के पत्तों की तरह बहने वाले, कुछ भी नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मुझे तो सतयुग वाला चाहिए। यहां कितने ब्यूटी क्वीन होंगी, कितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, कितने सुंदर सुंदर लोग होंगे, लेकिन बाबा कहता था अरे सतयुग की सुंदरता के आगे क्या है, ये तो ऊपर का कैसे क्या क्या लगा दिया है, है? बाबा कुसा बेकार लगता था। बाबा ने देखा, बाबा को एक बात वैराग्य आया, वो बेहद का वैराग्य, बाबा को वैराग्य आया, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, गई खत्म करी, बीती सो बीती देखी और दुनिया न जीती देखी, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। बाबा वैरागी, बेहद का वैराग्य, और सब लोगों का वैराग्य तो रजो रहा तमो रहा। महात्मा बुद्ध को वैराग्य आया, लेकिन कब वैराग्य आया, जब देखा कोई एक कुब्जा, कोई एक कमर झुका हुआ कोई व्यक्ति लाठी टेककर लकुट लेकर चल रहा है, देख रहा है, पूछा ये क्या है, कहता है इंसान है, कहते इसको ऐसा कैसे हो गया, ये लंबा हो गया था इसलिए झुक गया बुढ़ापे में, कुब्जा हो गया है, अच्छा। फिर देखा कहीं पर कोई लाश जा रही है, कहा ये क्या है, कहे कोई मुर्दा जा रहा है, तो मुर्दा क्या होता है, कहते आदमी मर जाता है तो मुर्दा हो जाता है, उसको लेकर जा रहे शव यात्रा, अच्छा तो मरना भी है, कहता जो जन्मता है वो मरेगा जरूर, कहा फिर यूथ फेस्टिवल में जाने से फायदा क्या है, चलो वापस चलो, कोई जरूरत नहीं, यूथ कल होना है ना, आज यूथ है कल होंगे बूढ़े तो होंगे, जो कल होना है तो छोड़ दो, ये दुनिया तो नारकी अच्छा नहीं, छोड़ो ये दुनिया को छोड़ो, ये लोग यहां क्यों आते हैं, ये क्या दुख होगा, ही होगा, दुख को देखा तो वैराग्य आया। अगर सतयुग का सुख किसी ने देखा होता तो कोई को वैराग्य ना तक जाके मैं मोक्ष में आ जाऊं, भगवान के पास वहीं जाके लीन हो जाऊं, नीचे धरती पे आऊं नहीं। तो बाबा को बेहद का वैराग्य, ऐसा वैराग्य संसार में किसी को नहीं था, ना हुआ ना होगा, बेहद का वैराग्य। और जिसको बेहद का वैराग्य आ गया उसके लिए संतुष्ट होना मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना मुश्किल नहीं होता है, अपने आप सब त्याग हो जाता। बिना बेहद के वैराग्य के त्याग करना धोखा है, तपस्या करना हठ है, और पुरुषार्थ करना रेत के ऊपर मकान खड़ा करना है। नोट कर लें, मन में नोट करें, डायरियों में नोट करें, पक्का ये ध्यान रखें, बिना बेहद के वैराग्य के आपने अपनी नौकरी छोड़ दो तो विनाश होने वाला है, और दो चार दिन देखा विनाश नहीं है, फिर कहा हो ये तो बड़ा धोखा हो गया, धोखा हो गया ना, हाँ बेहद के वैराग्य तो आया ही नहीं, कहा ये करना था वो करना था, तो मैंने बड़ी गलती किया, नौकरी भी छोड़ दी, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, बाद में बहुत पछताए, ये तो अंदर आया नहीं बेहद का वैराग्य, अरे सब जाने वाला है क्या करना है, नौकरी करके ये कर लेता उसके बाद भी क्या करता, ठीक है ना। इसलिए बिना बेहद के वैराग्य के त्याग धोखा है, और तपस्या हठ है, बैठे किसी को देखना नहीं, किसी को और देखना नहीं, ऐसे कर भटक बैठे, ऊपर तो आंखें बंद है और अंदर की आंखें सब देख रही इधर उधर, ये हठ है। कितना भी भट्टी में बैठ लो, अगर इच्छाएं अंदर हैं, इच्छाएं हैं कि जल्दी से जाना है बंबई में और अपना काम करना है, सब काम छोड़ के आया हूं, भट्टी में बैठे हैं लेकिन बुद्धि उधर है, क्या होगा, ये तपस्या नहीं हुआ, ये हट हुआ, बड़े मुश्किल से अपने आप को मजबूती से यहां रखा है कोच के ऊपर बिठा के, लेकिन आप भागे हैं बंबई पहुंच गए हैं, इसको कहते हैं हट, तपस्या हट है। बिना बेहद के वैराग्य के पुरुषार्थ करेंगे आज तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया, कल देखा कुछ है नहीं। वो रेत के ऊपर मकान खड़ा करना है बिना बेहद के वैराग्य के। इसलिए बेहद का वैराग्य बहुत आवश्यक है। बेहद के वैराग्य से त्याग होगा और त्याग से ही संतुष्टता आएगी और संतुष्टता से ही एक रस अवस्था बनेगी। और एक रस अवस्था जब बन जाती है तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, बैठे रहते हैं बाबा की याद में मन मगन हो जाता है। वो जैसे ब्रह्मा बाबा वो पत्थर पर सोए हैं लेटे, ऐसे आहा पत्थर पर भी लेटे लेटे भी उस पे बेगमपुर के बादशाह जैसे विष्णु शेष सैया पर सोए हूं, वो बादशाह की स्थिति, ये मगन स्थिति। फिर सूखी रोटी में भी आनंद आने लगता है। देख किसी के महल दुमहले प्यारे, दुखी नहीं होना। जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो है नहीं सोना, जो सब चमकता है उसको सोना मत समझो। ये दुनिया में फलाने शादी करके ये ऐसे हैं, कितने खुश हैं, ये देखने में आता है, अंदर से पूछो हाल क्या है। इसलिए दुनिया जो भी दिखाई पड़ रही है, जो इतनी हरी भरी चमक है, सह माया नगरी तो वैसे भी चमकीली बहुत दिखाई पड़ती है ना, ये जो भी चमक है ये सब बाहर के, इनको कभी भी इनके उसमें ना जाओ। रॉयल रूप से ये भी आता है, काश इतना अच्छा बंगला बाबा के लिए मिल जाए, कितना अच्छा हो जाए। अरे इच्छा रखने से थोड़ी मिलता है, संतुष्टता से मिलती है। जब बाबा को कोई इच्छा नहीं होती, तुम्हारे नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, तुम्हारा भाग्य होगा, जिसका भाग्य होगा वो अपना लगाएगा और कल देगा तो भी हम लेंगे नहीं। आज समय पर जो जिसने दिया भगवान उसकी मदद करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, जो भी है उसके लिए बहुत दिनों के लिए सोच करके उसको यूं रखना नहीं है। बेहद के वैराग्य से जो भाग्य चाहो वो बना सकते हो, सब सेवा में लगाओ, वो जो आपके कंकड़ पत्थर रखे हैं वो सोने चांदी, वो हीरे मोती बन जाएंगे, वो भाग में बन जाएंगे। क्या अगर वो नहीं होगा जो तुम्हारे पास, तो तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। बाबा ने भी कहा, बाबा के समय बच्चे, अभी भी बाबा कहता है, जो तुमको, जो बाबा की यज्ञ में अपना सब लगा देता है भगवान उसके लिए बंधायमान हो जाता है। जब दुनिया को कुछ भी नहीं मिलेगी, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तब भी बाबा तुम्हें दाल रोटी देगा ही देगा, वो बंध गया है। इसलिए साथियों, भाइयों और बहनों, ये समय है कुछ करने का, ये निशानियां हैं, तो संतुष्ट हो जाएं। ये संतुष्टता बेहद के वैराग्य से अभी से इकट्ठा करें, अपने मन को रोज सवेरे सोचें, देखें क्या, किस लिए आया हूं मैं, दुनिया में इसके लिए आया था, क्या करना है, क्या चाहिए, आय मन तुझको क्या चाहिए, तो क्या पाके क्या बनना चाहता है और पाएगा क्या, भगवान को छोड़कर सब कुछ मिला है, इसको छोड़ के तू क्या चाहता है, अंदर से पूछे, अंदर से जवाब आ, लास्ट में थोड़ी देर तो भरे भागेंगे, ऊपर से कहेंगे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अंदर चाहिए चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गहराई में जाएंगे आपको लगेगा सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक पहुंचना है, पास में तेरे जो भी बहुत है, नहीं किसी से कम, संतोषम परम सुखम, जो भी मिला है तुझको वो, फिर काहे को गम, जो भी मिला है तुझको बहुत है, फिर काहे को गम, संतोषम परम सुखम। दिया हुआ उस देन की, दाता की देन है, शायद हुआ भरम, सूखी रूखी खाके कोई कुटिया में भी सोता है, भरे हुए भंडार किसी के महलों में भी रोता है, महलों में भी रोता है, है? तो ये भ्रम है कि उसके पास तो बहुत है, मुझे ये मिलना चाहिए, तो संतुष्टता बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी चीज है संपन्न स्थिति की, सबसे बड़ी निशानी है निर्भय और निश्चिंत, निर्भय और निश्चिंत। भय कहां होता है, जहां लोभ होता है, लोभ कहां होता है, जहां इच्छाएं होती है, संपन्न स्थिति में निर्भय हो जाते। दो फकीर जा रहे हैं जंगल में, एक फकीर कहता है कि भाई आज तो गांव ही नहीं मिल रहा है, हम लोग सोए कहां? तो दूसरा कहता है कि फकीरों को गांव से क्या लेना देना, रात हो जाएगी थक जाएंगे सो जाएंगे। नहीं, कहते नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे डर लग रहा है। कहते क्या बात है? वो थोड़ी देर के लिए कहीं गया तो देखता है उसके थैले में एक सोने की ईंट थी। अच्छा, ये सोने की ईंट, अब समझ में आया क्यों डर लगता था। उसने उठा के फेंका, वही एक ऐसे ही ईंट कहीं पर था पड़ा, उसने उसके थैले में डाल दिया। फिर चलने लगे, फिर वही बोले अरे गांव ही नहीं मिल रहा है भाई, आज पता नहीं क्या हो गया, गांव ही नहीं मिलते हैं कोई। तो उसने कहा गांव चिंता क्यों करता है भाई, तू उसके लिए चिंता करता है जो माटी की ईंट लेकर ढो रहा है? कहता है माटी की थोड़े है, सोने की है। कहता देख देख। तो देखा, अरे कहते ये तो बड़ा धोखा हो गया, ये सोने की ईंट कहां से मिट्टी गए? अरे रे रे, वहीं फेंका, वहीं बिछाया, वहीं दोनों सो गए। सारा जो लोभ है वही हमको भयभीत किए, मेरा शरीर कहीं फूट ना जाए, फोड़ा हुआ कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, थोड़ी आहट मिलती कहीं ये तो नहीं थोड़ी वो। इसलिए डर बना हुआ है, हर एक व्यक्ति के पास डर है। आज दुनिया तो बहुत डरी है, खौफ में जी रही है। केवल बाबा के बच्चे इतने मुस्कुराते हैं, यहां बैठ के भट्टी में आनंद ले रहे हैं है? दुनिया के लोग तो बड़ी बीभत्स हंसी है, ऊपर से हंसते हैं तब जब कोई रोता है तो उसको रोते हुए देख के हंसते हैं लोग है? बाबा के पास, बाबा के बच्चों के पास निर्मल हंसी है, इसलिए बाबा के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। बीके भाई बहनों के पास जो नैसर्गिक सुषमा है, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट संसार में कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पवित्र और निर्मल मुस्कान है जो अधूरों पर खेल रही है। इस सबको सहज नहीं मिलता है। मैं तो यहां पर 35 साल और देख चुका हूं, मैंने यही महसूस किया, ये गीत जो बने ये बनाए नहीं, ये अपने आप निकलता है, बस उसके प्रेम का स्पंदन महसूस करता हूं और दिल से अपने आप छलकने लगता है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या पाना रहा, अब और क्या बाकी रहा, सब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। ये आनंद लेते जाइए, आनंद। तो निर्भय होंगे संपन्न स्थिति वाले, हम संपन्न हो गए, आप भरे जैसे राजा हो, क्या चाहिए, सब भरे भंडार है, सब तो भर गया है, क्या ना किसी को चाहिए, ना कुछ हमारा जाने वाला है, क्योंकि वो मेरे साथ स्वयं है ना। निर्भय और निश्चिंत स्थिति, जो निर्भय है वही निश्चिंत हो सकता है। निश्चिंत स्थिति, चिंताओं में व्यक्ति जकड़ा हुआ है, तनाव चिंता आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है दुनिया के लोग, और हमारे पास चिंता कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें ड्रामा का बड़ा खूबसूरत ज्ञान मिल गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और होगा जो वो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। इसके पास जिसके पास ही ज्ञान, दुनिया के लोग कह लेते हैं कि गीता में लिखा है ना, कह लेते हैं, लेकिन जीवन में उतरना चाहिए, बाबा के बच्चों के पास ही है, जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा नहीं किसी घर में आग लगी है और अब बोल दो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो डंडा लेकर पीछे दौड़ पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान मिला है, घर में आग लग गई, आपने पूरा मेहनत किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, जो भी हो सकता सब कुछ किया, जो नहीं बचा उसके लिए हाय हाय करना वो कहां तक समझदारी है। उसके लिए कहना जो हुआ अच्छा हुआ, तब कहना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ। ड्रामा का ज्ञान बड़ा विचित्र भी है, बड़ा अद्भुत भी है, अनोखा है। ऐसा पहले नहीं कि जो होगा अच्छा होगा, चलो हमको तो कुछ करना ही नहीं, बैठ जाओ, ये नहीं, करना है, होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन बिना किए कुछ भी नहीं मिलेगा, इस ज्ञान को जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इस चीज को अभ्यास करें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है हमारे अंतर मन से निकलना चाहिए। मैं गीत सुनाऊंगा, अभी गीत सुना सकता हूं इस पर, लेकिन यही कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए और आप खड़े होकर यही बोलना शुरू कर दो। ये अंतर की बात है, अंदर की बात है, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह हम सबके अनुभव में ये सब चीजें आ रही हैं, देख रहे हैं, जो हो रहा है होता है, बाद में ख्याल में आता है जो हुआ अच्छा हुआ। और ये भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस सब्जेक्ट में कमजोर हम हैं, जो होगा बहुत अच्छा होगा इसमें भी पास है, हम सब जानते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, ये होगा ना, सब कहते हैं पक्का जो होगा अच्छा होगा, बंबई जाएगा अंदर चलेगा चलेगा है? ऐसा तो नहीं कि बाबा जाने से पहले हमको बताना जरूर है, ऐसा तो नहीं, हाँ तो चला जाएगा है? जो हुआ अच्छा हुआ उसके लिए ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ ये अंदर अंदर प्रवेश करना चाहिए, और इससे भी ज्यादा होना चाहिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अक्सर करके जब घटना घट जाती है तो बाद में ख्याल में आता है, क्योंकि उसके परिणाम देखते हैं तो ख्याल में आता है बाबा आपने बचा लिया, बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो ऐसा होता, ये बाद में याद आता है। लेकिन जब घटना घट रही हो उस समय भी हमारे चेहरे पर जरा भी मलिनता ना आए, चिंता की भय की रेखाएं ना हो, उदासी की या अफसोस का कहीं कहीं नामो निशान ना हो, तब समझे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। साक्षी भाव के बिना ये नहीं हो सकता है। इसलिए इस बेहद के ड्रामा में यदि सचमुच जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, इस बात को पक्का करना है तो दो बातें नोट कर लें। एक है कि भगवान हमारा साथी है और ड्रामा में हम साक्षी हैं। भगवान हमारा साथी है, ड्रामा हमारा मालिक है। आज भी बाबा ने कहा मैं भी इस ड्रामा में बंधायमान हूं, बंधायमान हूं। तो साथी और साक्षी, ये दोनों भाव हमें इस जीवन में निर्भय भी बनाएंगे, निश्चिंत भी बनाएंगे, संपन्न स्थिति का अनुभव भी कराएंगे। तो हम सब आए बंबई वालों को तो देखा है मैंने, बाबा के बच्चे तो बड़े निश्चिंत है, दुनिया वालों कह दो कि बंबई जाने वाला है पानी कहते क्या बोलते हो भाई, जरा जरा सोचो तो सही क्या बोलते हो है? बाबा के बच्चे तो जानते हैं बाबा ने कहा है तो जो जाना है जो जाएगा, लेकिन बाबा के बच्चे सदा सेफ रहेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो घरों में भी रहते हैं, जो समर्पित भाव से रहते हैं, जिन्होंने बाबा के साथ अपने तार जोड़ लिए हैं, जिनके कनेक्शन बाबा से जुड़ गए हैं, उनको बाबा समय पर टच करेगा और आप सही जगह पर सही पहुंचेंगे। आपकी फ्लाइट लास्ट वाली फ्लाइट होगी, लास्ट फ्लाइट आपकी होगी और फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा के वह बच्चे जो श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, बाबा उनकी बड़ी संभाल करते हैं, बाबा उनकी बहुत केयर करते हैं। वो बहने जो हमारी बहने हैं, टीचर्स बहने जो सेवा केंद्र पर समर्पित हैं, कई बहने ऐसे सोचते हैं कि नौकरी करेंगे टीचर बनना बड़ा मुश्किल है, कौन जाए टीचर उचर कौन बने, इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाबा ने कुछ दिन पहले बोला ना इंडिपेंडेंट कोई रह नहीं सकता, सब बाबा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों ख्याल आता है, मैं उनको कहता हूं कि उनको एक बात को भूलना नहीं चाहिए, बाबा के यज्ञ में समर्पित जो उन्होंने अपना तन समर्पित कर दिया, जहां तन समर्पित है वहां सब समर्पित हो जाता है, मन भी धन भी हमारा सब वही है। हां तन की समर्पण मेहता के साथ मन का समर्पण भाव भी होना चाहिए, मन अगर समर्पित नहीं है तो धोखा भी हो जाता है। और ये बात सत्य है, जिन्होंने अपने तन को ईश्वरीय यज्ञ में सफल कर दिया, तन को लगा दिया, समर्पित हो गए, भगवान उनके तन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। जहां कहीं भी हमारी बहनें रही हैं, पवित्र बहनें जिनकी तार बाबा से जुटी है, जो समर्पित है, वो सदा सुरक्षित है, क्योंकि समर्पण मेहता में ही सुरक्षा है, जो समर्पित है वही सुरक्षित है। इसलिए बाबा की इस यज्ञ में घरों में रहने वाले वो उन युगलों को मैं कहना चाहता हूं, आप घर में रहिए बिल्कुल ट्रस्टी भाव से, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, ये आपकी गाड़ी है बाबा, ये आपकी महल माड़ी है बाबा, आपकी साड़ी बाबा, ये सब कुछ आपका है, सब कुछ बाबा को दो, तब सुरक्षित रह पाएंगे। और ये समर्पण भाव ही बाबा को आपके एकदम करीब अनुभव कराएगा, साथ का अनुभव कराएगा। तो साथी और साक्षी, इसके अलावा दाता और उदारता, दातापन और उदारता की भाव का भाव संपन्न स्थिति को ही मिल सकता है, जो संपन्न है। और जो संपन्न है किस बात में? भगवान की देन, जो गुण है, जो शक्तियां हैं। इसलिए बाबा ने शुरू में ही कह दिया है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं खजाने में तो होता है, वहां तो प्राप्ति अप्राप्ति की बात ही नहीं, प्राप्ति अप्राप्ति की बात तो यहां पर है। हम सब ब्राह्मणों को जो मिला है वो संसार में लोगों को नहीं मिला है। आश्चर्य लगता है, आप देखिए बाबा के बच्चों के पास यहां पर कहां हम स्वप्न और संकल्प तक भी पवित्रता की बात करते हैं। हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ यहां तक है। दुनिया के लोग तो स्वप्न तो संकल्प की बात ही नहीं समझ सकते हैं। वो तो दुनिया में रहकर के, कलयुगी दुनिया में कोई ऐसा पवित्र जीवन जैसा हमारी दादियां, जैसे हमारी बहनें, जैसा हमारा यज्ञ, जैसे यहां के भाई बहनें हो जाते हैं, पवित्र बनते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया के लोगों के लिए तो कल्पनातीत है, सोच भी नहीं सकते। तो हमारा परिवार बड़ा निर्मल, बड़ा अच्छा है, हमारे पास सर्व प्राप्तियां हैं। और जिसके पास पवित्रता है, संतोष है, शांति है, अतीन्द्रिय सुख है और स्वयं सर्वशक्तिमान है, उसको फिर पाने की कोई आवश्यकता और रह ही नहीं जाती है। और भट्टी से आपने बहुत कुछ हासिल किया, अब रह गई कि संपन्न स्थिति तो है हमारे पास। स्मृति का स्विच ऑन करें, आपको लगेगा ये बात का महसूस होगा, और इसको बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े अच्छे ढंग से महसूस करें, सिद्धत के साथ सिंसियरली देखें और महसूस करें, सब कुछ मिल गया है, पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, ये महसूस करें। और आगे का है जो आज बाबा ने कहा कि बादल जो भरे हुए हैं, जो बरसते नहीं, उनको क्या कहा बाबा ने? हैं? सुस्त बादल हैं? और जो चुस्त बादल हैं, बरसे बिना रह नहीं सकते। संपन्न तो हो गए हैं, अगर आप संपन्न हो गए हैं लेकिन देते किसी को नहीं है तो बड़े कंजूस भी हैं, है ना? इसलिए अब संपन्नता की स्थिति तो वो है, लेकिन यदि संपन्नता स्थिति कायम रखनी है तो सबको देते चले। आज बाबा की पूरी मुरली में एक ही बात घड़ी घड़ी, धारणा करके कराओ, धारणा करके कराओ, यही बार बार संगठन को भी एक मत में स्नेह के सूत्र से बांधने वाले एक मत हो। तो इसके लिए शुभचिंतन चाहिए, जिसके पास शुभचिंतन का खजाना है उसके पास बहुत कुछ खजाना है। तो अपने विचारों को हम आप सबको राय देंगे, हम में से हर भाई बहन यहां भट्टी जरूर करे। भट्टी करने के बाद अपने लिए डायरी रखे, नोटबुक रखे, नोट करे, यहां के अनुभव नोट कीजिएगा, क्या क्या मिला है उनको चिंतन कीजिएगा, चिंतन में लाइएगा। जो अच्छे चिंतक है वो ही सदा सुरक्षित है, जो अच्छे चिंतक है वही संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जो अच्छे चिंतन में रहते हैं वो बाबा को साथी बना लेंगे, उनकी दृष्टि में कोई निर्दोष, सब निर्दोष होंगे, किसी का दोष नहीं। निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ वृत्ति, ये हमारे पुरुषार्थ का अंतिम परिणाम है। परसों नरसों की मुरली में बाबा ने एक बात कही, एक सेंटेंस बड़ा अच्छा रहा, तुम्हारे वर्तमान पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्मीनारायण नहीं, वो तो कर्मातीत बनेंगे, क्या बनेंगे पीछे। बाबा ने तीन लाइन जो बात कही बिल्कुल मजा आ गया। पहली बात कौन सा? श्रेष्ठ वर्तमान लक्ष्य होना चाहिए, सदा खुश रहना है। जिसने सदा खुश रहना सीख लिया उसको क्या चाहिए, ये वर्तमान समय का पुरुषार्थ हो। दूसरा, सबसे मीठा व्यवहार, मीठे मीठा होके चलना, ये सबसे बड़ा व्यवहार है। मीठा होके चलना ये व्यवहार, और सबको सुख देना, किसी को दुख न देना, ये पुरुषार्थ का सबसे बड़ा लक्ष्य। आइए हम सब मिलकर अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। आपकी भट्टी संपन्न हुई, अब यहां से हमको हर रोज सवेरे एक संकल्प ले ले। आपको एक चार्ट देता हूं, सवेरे उठते ही पहला संकल्प हो कि मैं परम पवित्र आत्मा इस धरती पर अवतरित हुआ हूं, मेरा अवतार हुआ है। रोज ही आपको ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। हम अल्लाह लोग हैं, मेरा अवतार हुआ है। अः धरती मां, तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट होने को आ गए क्योंकि तुम्हारे ईष्ट आ गए। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, सबको सांत्वना दो, सबको बोलो, सबको कह दो, अब मेरा अवतार हुआ है, हमारा अवतार हुआ, हम सब आ गए। ऐसे अवतरित हुई आत्मा। योग में भी, याद में भी कई भाई बहने नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको सरल उपाय बताता हूं, आप ये समझिए कि मैं तो आया हूं, जो आया हुआ होता है उसको वापस जाने में देर नहीं, मुश्किल नहीं लगता है। नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो नीचे ही आ जाएंगे, ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो आप इसी को परमधाम बना दें, बाकी सबको नीचे भेज दें, योग में बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो योग के लिए भी अच्छा अभ्यास। और मैं अवतरित हुआ हूं तो मुझे अनासक्त होने में, अनाकर्षण होने में और उपराम होने में और वापसी यात्रा के लिए हम सहज रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो पहला एक स्वमान पक्का कर ले, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। इस अभ्यास को बार बार चिंतन करें ताकि ये न लगे कि थोड़ा मैंने कह तो दिया, पूरा हो गया। इसको बार बार रिवाइज करें, एक स्वमान पक्का ले ले, मैं परम पवित्र अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं आया हूं इस धरती पर। ये अभ्यास। दूसरा अमृत बेला, अमृत बेला आप मेहनत मत करें, अमृत बेला बाबा के साथ बैठ जाए और सारे विश्व को देने लगे। संपन्न स्थिति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि संपन्न स्थिति का वही आभास कर सकता है जो दाता बन करके सबको देता है, जो उदार है वो संपन्न है। संपन्न तो कई हो सकते हैं लेकिन बिना देने के संपन्न नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो दाता है वही सबसे दुआएं पाता है, जो दाता है वही निरंतर प्रसन्न रह पाता है, जो दाता है वही भाग्य विधाता बन जाता है। इसलिए बाबा ने हमको श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम दे दी, हम सबको अपने साथ में लेकर दाता बना दिया, भाग्य विधाता बना दिया। तो हम सब मिलकर आए, पुरुषार्थ करें, रोज योग में बैठे अमृत बेला तो सबको देने लगे। तीसरा है, और अमृत बेला कभी जब लगेगा कि मुझे देना है तो अब आप उठेंगे जरूर, अमृत बेला मिस न करें। जैसा बहन ने शुरू शुरू में बताया, मैं अमृत बेला पर स्वयं खास ध्यान देता हूं और हम सबको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि समय बता रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, दादी अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद से आई, बहुत तबीयत खराब थी, सारे हाथ में लगे थे इंजेक्शन के, सब सिरिंज वगैरह का। दादी ने कहा सब निकालो, मुझे जाना है मधुबन, 20,000 भाई बहने आए हैं, मुझे डॉक्टर, मुझे जाना है। डॉक्टर को भी कह दिया दादी ने, कह दिया डॉक्टर तुमने जिंदा नहीं रखा है हमको, हमको ऊपर वाला उसने जिंदा रखा है, डॉक्टर को ही बोल दिया। बड़ा गजब का है, क्या समान दादी का है, बड़ा गजब का। दादी आई वहां से 11 बजे रात को चली, सवेरे 1 बजे पहुंच गई मधुबन में शांति वन में, और कहती है अपने बहनों जो साथ में है कि मुझे सवेरे 4 बजे जगा देना, मुझे अमृत वेला भी करना है। अब बताइए, इतने उसमें होते हुए भी दादी अमृत वेला मिस नहीं करती है, दादी ने करके दिखाया है पूरे जीवन में इतना अनुशासित जीवन। ये दादियों का ये प्यार हमारा दादियों से है तो हम सबको सीखना चाहिए कि हमारा प्यार है उनसे तो उनके कुछ तो हम करें, अमृत वेला हमसे मिस नहीं होना चाहिए। आज आप संकल्प कर लें तो बहुत अच्छा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप एक सशक्त अमृत वेला, एक सुदृढ़ दिनचर्या का आधार बनाएंगे और अमृत वेले अपने आप को भरपूर करके सबको देंगे। करेंगे ना सब, करेंगे। हाँ, ये दादियों की भी इच्छा है, तो सबका संकल्प है। ये हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, लेकिन सवेरे भाग्य तो बना रहे हैं, उठे सवेरे और सबको देना शुरू कर दे। संपन्न होके जा ही रहे हैं, अब देना शुरू कर देना है। तो तीसरी बात ये हुई, दूसरी बात अमृत बेला। तीसरा है जो बाबा की मुरली है उसको हम अपने चिंतन का, शुभ चिंतन का खजाना जो है वो मुरली को आधार बना ले। मुरली को प्यार करो, मुरलीधर तुमको प्यार करेगा, ये बाबा के बोल है। इसलिए मुरली में हमारे सारे प्रश्नों का जवाब है, सारे क्लासेस का सार है, सब कुछ उसी में है, कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं। सारे प्रश्न हमारे उनका जवाब मिल जाता है मुरली में। मुरली को अच्छी तरह पढ़े। मैं सवेरे सवेरे मुरली की मेन मेन पॉइंट सब याद कर लेता हूं, एसेंस, क्वेश्चन आंसर, धारणा सार, वरदान और स्लोगन। और पांच लोगों को मुझे बानी एक बार सुन करके सवेरे फाइनल मुरली से पहले वो आता है तो सबको सुना देता हूं, दो तीन को तो फोन पे सुना देता हूं और याद कर लेता हूं, तो हमको याद रहता है। मुझे थोड़ा मजा आता है बहुत सुनने में सुनाने में। आप सब भी मुरली से प्यार करो, मुरलीधर आपको प्यार करेगा। और चौथी बात कर्म योग, उठते बैठते चलते फिरते जैसे मैंने बताया, सबको देखते हुए मन में रहे मेरा कुछ भी नहीं है, मैं और मेरापन से मुक्त, यही हमारी कर्मातीत स्थिति की निशानी होगी। मैं और मेरा, इसके बजाय जैसे गाना शुरू में बजा, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे हो गया तू, वो सब कुछ दे दिया बाबा ने, वैसे समर्पित हो जाए, उसी में सुरक्षित है, उसी में संपन्न स्थिति है। मैं भी बीच बीच में अभ्यास करता हूं, अभी मैं योग के बाद केवल आपको पांच स्वरूपों का एक सरल अभ्यास बताऊंगा, आप उसको अभ्यास कर सकते हैं जो कर्मयोग में आपकी जाएगा। और पांचवी बात अंतिम वो ये है कि हम चार्ट जरूर रखें, हम अपना चेकिंग रखें, पोता मेल रखें, जो बाबा की बहुत अच्छी श्रीमत है जिसमें हम अक्सर करके फेल हो जाते हैं। हमें चार्ट लिखना चाहिए, तभी तो हमको पता रहेगा आज मैंने जमा क्या किया, आज हमने किया क्या, पाए क्या, कितना चले, कितना चलना बाकी है। और रात को सोते समय सबसे क्षमा मांग लें, सबको क्षमा कर दें और सबका दिल से धन्यवाद दे दें, उन सबका धन्यवाद जिन्होंने हमको यहां पर पहुंचाया, चाहे कैसे भी पहुंचाया, उन सबका धन्यवाद करें। आपके बदौलत हम यहां पहुंच गए, बड़ी खुशी, बड़े प्यार से हम पहुंच गए, इसलिए उन सबका धन्यवाद दें। रात को सोने से पहले एकदम जो दिल का बोझ है, जो दिन का बोझ है, वो सब खाली कर दें, मुक्त हो जाएं। कहते हैं दिन के उजाले में कोई ऐसा काम न करें कि जो मुंह छिपाते फिरे रात को, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई ना काम न करें कि मुंह छिपाते फिरे दिन के उजाले में। इसलिए आइए हम सब मिलकर बाबा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक बनकर, जो आज भट्टी में आपको मिली यहां पर, उन सब चीजों को अच्छी तरह से स्मृति में लाकर उसके हम स्वरूप बन जाएं। सफल भट्टी के लिए और यहां पर आने का मौका मिलने के लिए और यहां आनंद लेने के लिए और जिन भाई बहनों ने आपको ये सुअवसर दिया, उन सब के लिए हम हृदय से बहुत बहुत बधाई दें और धन्यवाद दें। ओम शांति। पांचों स्वरूप, ठीक है। मैं बहुत सोच रहा था बाबा की बात कि पांचों स्वरूपों का अभ्यास कैसे करें, तो पांच लाइन में मैं सोच रहा था कि बाबा कहते हैं आप अनादि में जाओ, आदि में जाओ, पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, हम तो इसी में उलझ जाते हैं। अनादि में जाते हैं तो अनादि में चले जाते हैं, पता नहीं लगता कहां चले गए, और फिर आदि में जाते हैं तो आदि में रह जाते हैं, हम कैसे करें। ये बाबा से मैं कह रहा था, मैंने कहा बाबा सारे गीत तो बन गए, इसका भी कुछ उपाय बताइए। मैं सवेरे उठा और पांच लाइन में हुआ, आप भी पांच लाइन में अभ्यास कर सकते हैं, एक एक सर्किल की तरह, और अंदर अंदर जिसे माला फिरता है ऐसे ऐसे करें, देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार, बीस बार, पच्चीस बार नहीं, पचासों बार कर सकते हैं, और आज बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने मोबाइल टोन बना लिया उसका अभ्यास करने के लिए, आप भी उसको कर सकते हैं। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा,
मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा।
अभी बोली,
मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।
आप तो बहुत ही सहज कर दिया पांच स्वरूपों को ना। ये याद रहेगा ना सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई का। सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न हो गए वो हमेशा याद रखना, क्योंकि संपन्नता जब होता है तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ ही जाता है। माताओं को जैसे पता है हलवा जब बनाते हैं किनारा कब छोड़ता है, कढ़ाई जब वो पक जाता है, ऐसे ही फल कब वो पेड़ से निकलता है, जब पूरी तरह पक जाता है तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, बाबा के प्रति प्यार हमेशा निरंतर बना के रखते हैं, तो आत्मा संपन्न हो जाती। जब आत्मा संपन्न हो जाती तो ऑटोमेटिकली कलयुगी दुनिया से वैराग्य आ ही जाना है। वैराग्य लाने के लिए मेहनत नहीं करना है, लेकिन संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, तब वैराग्य ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। अभी हम एक घंटा योग करेंगे, 7:30 तक योग चलेगा, फिर उसके बाद एक स्पेशल प्रोग्राम है आप सभी के लिए। वो क्या है, भोजन के बाद 8:30 7 नंबर डाइनिंग हॉल के बाहर वहां बॉनफायर होगा, ठीक है। वहां गीत संगीत का भी कार्यक्रम होगा, और फिर लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जो आग है उसमें आप सभी को अपने कमियों को जला देना है। तो इसीलिए अभी एक घंटे के योग में क्या सोचना है कि कौन कौन सी कमी है खुद में। बहुत समय तक हमने छोड़ने की पुरुषार्थ की, छोड़ने का संकल्प किया, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी आज के दिन आप वो संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, उसको छोड़ना ही है। और मधुबन तपोभूमि में आप ये संकल्प करेंगे, बाबा आपको एक्स्ट्रा मदद भी दे देते हैं। तो इसीलिए आज ऐसे कुछ कमी जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं नहीं छूट रहा है, तो उस कमी को जलाएंगे, त्याग नहीं करेंगे, जला के जाएंगे, ठीक है। तो वो लिख लीजिए आप उस पेपर को, फिर वहां जलाएंगे, ठीक है। ओम शांति।